Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम
शिवाय नमः ओम
नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम
हराय नमः ओम
हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम
हराय नमः ओम
हराय नमः ओम नमो हराय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम
बाबाय नमः ओम
बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय
नमः ओम
बाबाय नमः ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम मृडाय नम ओम नमो मृडाय मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम
मृडाय नम ओम नमो मृडाय शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम
शिवाय नम ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरंतरम जप मन शिव शिव निरंतरम भज मन शिव शिव
निरंतरम
जप मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम रट मन शिव शिव निरंतरम स्मर मन शिव शिव निरंतरम ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम 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 कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतरोपनिषद के चतुर्थ अध्याय में दसवें मंत्र की व्याख्या है। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च विचैति सर्वम् तमीशानं वरदं देवमिद्यम् निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यतः जायमानम् स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु यो देवानामधिपो यस्मिन्लोका अधिश्रिताः य ईशे यस्य द्विपदस् चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम तो विचार चल रहा है कि ये सारा जगत किस तरह उत्पन्न हुआ, इस जगत को उत्पन्न करने वाला निमित्त कारण क्या है, इस जगत का उपादान कारण क्या है, कार्य के रूप में प्रतीत होने वाला यह विश्व ब्रह्मांड जड़ और चेतनात्मक विश्व सृष्टि किसमें प्रतिष्ठित है, इसका नियामक कौन है, ये सारे बातों का निश्चय होना चाहिए। इस पर श्रुति विचार कर रही है। देवात्म शक्तिम सगुणेर निगूढ़ाम ते ध्यान योगानु गतेन पश्यन् देवात्म शक्तिम निगुणेर निगूढ़ाम। उन ऋषियों ने अपने ध्यान योग के द्वारा जगत कारण को देखा, वो जगत कारण है, उस देवा अर्थात प्रकाश स्वरूप परमात्मा के आत्मशक्ति, अपनी अनिर्वचनीय शक्ति, अपने गुणों से वह युक्त है। सगुणेर निगूढ़ाम, उसी को यहां जाकर ये कहा गया है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान। जिसको वेदांतियों ने माया कहा है, परमात्मा की शक्ति कहा है, अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका शक्ति कहा है, उसी को तुम प्रकृति जानो। या प्रकृति शब्द का अर्थ सांख्य प्रसिद्ध जो प्रकृति अर्थात प्रधान नहीं है, या प्रकृति शब्द का अर्थ होता है कारण, उसी को तुम मायाम तो प्रकृतिम विद्यान, उसी को तुम जगत का उपादान कारण मानो, निश्चय कर जान लो। और साथ ही उस माया का नियामक कौन है, तो बोले महेश्वर। महेश्वर को उस प्रकृति का नियामक जानो, अर्थात मायिनम तु महेश्वरम। माया और माई, माया से संबंध होने वाला माई, महेश्वर को तुम माई जानो, मायाधिपति जानो, माया का नियामक जानो। तस्य अवयव भूतेस्तु, उस माया के अवयव के रूप में ये सारा का सारा जगत प्रकट हुआ है, और वही माया अपने अवयव साध माने स्वरूप से व्याप्तम सर्वमिदम जगत अर्थात माया और मायाधीश महेश्वर, ये दोनों ही इस शरीर इस विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। माया शब्द का अर्थ क्या किया, तो बोले अनिर्वचनीय है माया। माया है कैसे, माया का स्वरूप क्या है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में माया को अनिर्वचनीय कहा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिकाया कार्यानुमेया सुधियैव माया ययामिदं सर्व जगत प्रसूयते। ये माया के बारे में लक्षण है, आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में माया का ये लक्षण बता दिया है। अव्यक्त नामनि, अव्यक्त जिसका नाम है, स्वयं व्यक्त नहीं होती, किसी के संपर्क में आने पर वह कार्य के रूप में तो परिणत होती है, स्वयं अपने आप अपना स्वरूप किसी के सामने वह व्यक्त नहीं करती। इसलिए माया ऐसी चीज है कि उसको देखने वाला, माया को देखने वाला, माया को माया के ही रूप में देखने वाला केवल एक ईश्वर है। उसके अलावा माया को माया के रूप में प्रत्यक्ष कोई नहीं देख सकता। माया को कार्य के रूप में तो सभी लोग देख सकते हैं, देखना चाहें तो, परंतु माया को माया के रूप में नहीं देख सकते। इसलिए कहा अव्यक्त केवल परमेश्वर के सामने व्यक्त होती है, और के सामने वह व्यक्त नहीं होती। अब इस प्रसंग में आपको थोड़ा सा पुराणों की कहानी भी समझा दें, सुना दें। भाई आपको कई बार सुनाया है संतों ने, और क्योंकि पुराणों की कहानी जरा रोचक होती है, रुचिकर होती है, सुनने में जरा रुचि लगता है, रुचि बढ़ जाता है, मनोरंजन हो जाता है। तो पुराण की दृष्टि यह रही है कि उपनिषद ये वेदांत के जो गुण रहस्य को थोड़ा सा सरल करके दृष्टांतों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सबको समझ में आ जावे, इसके लिए पुराणों ने ये शैली अपनाई है कि किसी भी बात को कहने के लिए एक रूपक बना देते हैं। कहते एक बार भगवान नारायण और नारद जी कहीं घूमने जा रहे थे, तो आप लोगों ने कई बार सुना है ये बात। तो चलते चलते नारद जी ने प्रश्न कर लिया कि महाराज, हमने हर शास्त्र में हर गुरुओं से यही सुना है कि आपके साथ रहने वाली, आपसे अभिन्न होकर रहने वाली और आपके आज्ञाकारिणी एक माया है, ऐसा हम बार बार सुनते हैं, और आप उसी माया के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, और उसी माया के माध्यम से ही कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं आप, यदि वो न हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा भी हमने सुना है। हमने कहा न, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में लिखा है, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति सत्ता प्रभवितुम न चे देवम देवो न खलु कुशल स्पंदितुरप। हे शिव, हे देवी, जो शिव तत्व है, निर्गुण निराकार निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म तत्व है, वह शक्त्या युक्तो भवति, यदि यदि शक्ति से यानी आपसे संबंधित होता है तभी वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होता है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति सत्ता प्रभवितुम, यदि वह शिव, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, चैतन्य स्वरूप परमात्मा आप शक्ति से युक्त नहीं होता है तो वह एक तिनके को भी नहीं हिला सकता। इस बात को सभी ने जाना है, इसीलिए कुछ करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता होने के कारण ही हरिहर विरिंचिया दिविरपि, हरि भगवान विष्णु, हरा भगवान शिव, विरिंची ब्रह्मा, अतस्त्वाम आराध्य, यही कारण है कि नित्य निरंतर ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी नित्य निरंतर आराधना करते रहते हैं, आपकी उपासना, आपकी पूजा करते रहते हैं। उनकी पूजा, उनकी उपासना, उनके ध्यान, उनकी सप्रिया के द्वारा प्रसन्न होकर आप उनको अपनी थोड़ी सी शक्ति दे देते हो, और आपसे प्राप्त हुई हुई थोड़ी सी शक्ति से ब्रह्मा सारे विश्व सृष्टि करने में समर्थ होते हैं, और आपसे प्राप्त थोड़ी सी शक्ति के द्वारा विष्णु इस जगत के पालन और रक्षा करने में समर्थ होते हैं। आपसे प्राप्त थोड़ी सी शक्ति से रुद्र सारे जगत का संहार कर सकते हैं। यदि आप उनके प्रति उनको थोड़ी सी शक्ति आप प्रदान न करो तो वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और वो आपकी प्रसन्नता बनी रहे और आपसे आपकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे और आपसे नित्य निरंतर थोड़ी सी शक्ति का स्रोत उनको प्राप्त होता रहे, ताकि इस जगत में वह बड़े महान देवता के रूप में, पूज्य के रूप में जगत में उनकी प्रतिष्ठा हो और सब उनकी आराधना पूजा ध्यान कर सके, उनकी महिमा बढ़ सके। अपनी महिमा बढ़ाने के लिए, अपनी महत्व बढ़ाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी नित्य आपकी ही आराधना करते हैं। इसलिए मैं भी आपकी आराधना करने में लगा हुआ हूं। शंकराचार्य जी से बात सौंदर्य लहरी राजराजेश्वरी ललितांबा की उपासना में ये बात कहते हैं, उसी को यहां माया शब्द से कह दिया गया है। तो नारद जी को जिज्ञासा हुई कि ये सारी बात हम सुनते हैं, लेकिन इतने वर्षों हो गए आपके साथ हम घूमते हैं, कभी भी उसका दर्शन नहीं किया है। भाई कोई बेटा ये कहे अपने बाप से है कि पिताजी मेरा जन्म मेरी मां से हुआ है और उस मां से अपने शादी की है, उसके बाद मेरा जन्म हुआ है और इतना बड़ा हो गया, अभी तक मैं अपनी मां को नहीं देख पा रहा हूं, उनको कहां छुपा रखे हो, कोई कहे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं बोलो। लेकिन भगवान विष्णु की यह विशेषता है, परमात्मा की यह विशेषता है कि वह अपने आप सबको संभाल लेते हैं और उसकी मां को, बच्चे की मां को पता नहीं कहां छुपा देते हैं। इस मंत्र का तो यही ना आशय है, उसको साथ में रखकर बच्चे पैदा कर लेते हैं, स्थावर जंगम सब सृष्टि कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सृष्टि को वो सब खुद संभालने लग जाते हैं। उसकी मां को कहते हैं तू छुपे रहना भाई, बाहर नहीं आना, हम सब संभाल लेंगे। शायद नारद जी को यही लगा कि हम जब भी देखते हैं खाली आपको देखते हैं, हम आपके साथ तो घूमते रहते हैं, आज तक हम अपनी मां को नहीं देख पा रहे हैं, तो कृपा यदि आप चाहो, आपकी दया हो, आपकी कृपा हो, तो एक बार हम उस हमारी उत्पत्ति का कारण जो हमको उत्पन्न करने वाली मां है, जरा उसका दर्शन करा दो ना भाई, अपनी मां का तो दर्शन कर लें एक बार। भगवान नारायण जी ने, नारायण ने कहा, कहते हैं कि अरे बेटा उस मां के दर्शन करने की जरूरत ही नहीं है, सब काम हम कर रहे हैं तो क्या आवश्यकता है उसकी, बोलो ना? तुम्हारे मलमूत्र भी हम ही ठीक कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, पालन करने वाले होने के कारण बच्चों का मलमूत्र भी वही है। खाली खाना देने मात्र से तो काम नहीं चलता है ना, उस खाने का जो अन्न है उस अन्न के विभाजन है, भुक्तम अन्नम त्रिधा विभज्य, प्राणियों के द्वारा खाया गया जो स्थूल अन्न है उसका तीन विभाग होता है, उसमें से तत्र यत् स्थविष्टम रूपम, उसमें से जो स्थूल रूप है वह पुरुष होकर निकल जाता है, यानी मल होकर निकलता है, उसमें जो मध्यम रूप है वह रस बनता है, और उसमें जो सूक्ष्म रूप है वह उसके द्वारा मन विकसित होता है। अन्नमयम ही तस्मात अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये चांदोक उपनिषद का प्रसंग है। प्राणियों के द्वारा खाए गए अन्न का तीन रूप हैं, स्थूल रूप मल बनकर निकल जाता है, मध्यम रूप रस और रक्त आदि बनकर शरीर को पुष्ट करता रहता है, और उसका जो सूक्ष्म रूप है वह मन को विकास करने में, मन से संबंधित होकर मन को शक्ति प्रदान करता है और मन को विकसित करने में कारण बन जाता है।
तो ये क्या हुआ, मलमूत्र की भी व्यवस्था हुई, परमात्मा करता है कि नहीं? और वो कह ही रहा है, गीता में तो ये कह ही रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, अन्न भी मैं ही हूं और उस अन्न को बनकर अंदर जाने वाला अन्न को पचाने वाला भी मैं ही हूं, उस अन्न का त्रिधा विभाजन करने वाला भी मैं ही हूं, और उसके जो स्थूल भाग है मल और मूत्र उसको शरीर से बाहर निकालने वाला भी मैं ही हूं, रस को सारे शरीर में संचरण कराने वाला भी मैं ही हूं, पानी को फिर सूक्ष्म रूप में प्राण के साथ संबंधित कराने वाला, अन्नमयमी सौम्य मना आपोमयी प्राण तेजोमयी वाक, आप जो घी खाओते हो उस घी को स्थूल रूप आपके हड्डी आदि के रूप में परिणत कर देना, सूक्ष्म रूप उसी तरह आप सूक्ष्म रूप का आपके वाणी के रूप में परिणत कर देना, ये सारे काम तो वही करता है ना। तब कहा, ये सब काम मैं ही कर लेता हूं तो तुझे अपनी मां की क्या आवश्यकता पड़ी? आज अचानक मां को क्यों समझ रहा है तू? तुझे भूख लग रही है तो भोजन हम व्यवस्था कर देते हैं, बोल, क्योंकि भोजन की व्यवस्था करने वाला तो वही है। तुझे निद्रा लग रही है तो उसके शयन की व्यवस्था भी हम कर देते हैं, तो आज अचानक अपनी मां को क्यों याद कर रहा है? नहीं नहीं महाराज, बहुत दिन हो गया, जब से पैदा हुए हैं आज तक देखा ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि एक बार उसका झलक देख ले मैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, देख लेना, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे, जब मौका आएगा तो दिखा देंगे। नारद जी तो चल पड़े और भगवान ने कहा है जब मौका आएगा दिखा देंगे, तो जरूर दिखा देंगे, फिर आगे चल पड़े। भगवान ने विचार किया कि ये अपनी मां का दर्शन करना चाहता है, सीधे मां को इसके सामने खड़ा करेंगे तो ये भरोसा ही नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं करेगा, कैसे मैं पैदा हुआ हूं इससे, इसको कुछ न कुछ बोध हो जाए, पता चल जाए, तो आगे जाकर खूब गर्मी का ऐसा संकल्प किया, बहुत गर्मी हो गई। चलते चलते नारद जी कहने लगे कि भगवान बहुत गर्मी हो गई है और साथ में जो पानी था वो भी समाप्त हो गया, उसको समाप्त करने का तो उन्हीं का संकल्प है, पानी भी समाप्त हो गया, गर्मी बहुत बढ़ रही है, प्यास लग रही है, कहीं आसपास में पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है महाराज? भगवान नारायण ने कहा कि हाँ बेटा, वो तो मुझे भी ऐसा ही हो रहा है, प्यास तो मुझे भी लग रही है, गर्मी बहुत है, प्यास तो मुझे भी लगी हुई है। अब मैं तो मालिक हूं, तुम सेवक हो, तो फिर सेवा तो तुमको ही करना है, तो हम तो इस चबूतरे में बैठ जाते हैं छांव के नीचे, और तुम पानी क्यों खोजो, पानी की व्यवस्था कर लो, जाओ। नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप यहां बैठो, भजन करो, हम खोज कर लाते हैं पानी, होगा यहीं आसपास में कहीं ना कहीं पानी तो होगा ही। नारद जी चल पड़े, थोड़ी दूर आगे निकल गए, भगवान अपने छांव में बैठे हुए थे, निकलते निकलते थोड़ी दूर गए, जब तक अब नारद जी ने नारायण को देखते रहे तब तक तो कोई समस्या नहीं थी,